प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुकाते चले,
देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे, देते चले
देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा।
निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से
ईश्वर की, ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी
देते चले, प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं।
साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले
सागर की, सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले।
दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी संवरने लगेंगे, देते चले
देते चले, प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले,
प्यार प्रभु का लुटाते चले,
प्यार प्रभु।
ओम शांति। सभी फ्रेश है ना? हम सबके बीच में एक बार फिर से हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे बाबा है ना, बच्चों से प्यार है, और जब देखते हैं बच्चों को तो रोज आ जाते हैं। किस लिए? बच्चों से मिलन मनाने और बच्चों को प्यार भरी मुरली सुनाकर, प्यार से शिक्षाएं देकर उच्च महान बनाने के लिए। ऐसे ही हमारी वरिष्ठ दीदियां हैं ना, उनको भी भाई बहनों से बहुत रूहानी प्यार है, इसलिए जब भी कहो वो हाजिर हैं। जरूर ताली बजाओ। कभी ये नहीं कहते कि ये काम है या वो काम है या तबीयत है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, हमने नहीं कभी देखा। और जरूरी बात है, काम तो बहुत सारे होते ही हैं जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन क्योंकि प्यार है, दुलार है, और बाबा ने अपनी सीट पर बिठाया है तो सबसे मिलने आ जाते हैं, और मिलते मिलते इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें कह जाते हैं जो यहाँ छप जाती हैं। दीदी की दो बातें सुनाऊंगी, बातें तो बहुत सारी हैं। कितने भी बड़े बड़े काम हो, अब इतना बड़ा यज्ञ है, इतना बड़ा जोन है, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, फिर अभी तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संयुक्त मुख्य प्रशासी का भी हैं, और भी अन्य कई काम हैं, लेकिन कभी मैंने उनको भारी नहीं देखा, कभी भी नहीं। सब बाबा को सौंप कर चलती हैं, कभी भी भारी नहीं। हम तो घर परिवार के दो काम आ जाते हैं ना, तो भी भारी हो जाते हैं, लेकिन दीदी को मैंने सदा हल्का देखा है। और कैसे काम होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और दूसरी बात, उनकी सादगी सदा प्रेरणा देती है, उनकी सादगी। जिस सेवा केंद्र पर आप रहते हैं, मुंबई में सायन सेवा केंद्र है, जहां दादी ब्रजेंद्रा जी रहा करते थे, आपके साथ ही आप रहते थे, अभी भी वहां ही हैं। सबसे सिंपल लेकिन रॉयल, तो उनकी सादगी बहुत प्रेरणा देती है। यहां भी आते हैं तो चलकर आ जाते हैं। हम कहेंगे दीदी गाड़ी से, कहा नहीं मैं चल के जा सकती हूँ, बारिश है तो बग्गी से ही आ जाते हैं। बग्गी तो दीदी चढ़ने में ऊंची है, नहीं नहीं ये चलती है, वो पटरा रख देता है ना, मैं चढ़ जाती हूँ। तो सीखने जैसी बातें हैं, कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन अभिमान नहीं है। तो ऐसी दीदी जी से आज हम सुनेंगे कि दुआओं का खजाना कैसे जमा करें, वो जमा करने की विधि क्या है। दीदी जैसे आपने जमा की है ना बहुत सारी दुआएं, ऐसे हमें भी बताएं कि दुआओं को कैसा जमा करें। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दीदी संतोष दीदी जी।
ओम शांति। हमेशा कहा जाता है दवा से दुआ श्रेष्ठ। जब डॉक्टरों का कुछ नहीं चलता है उस समय पर जो नहीं मानने वाले भगवान को, वो भी कहते हैं कि आप दुआ मांगो, भगवान से दुआ मांगो, मनुष्यों से दुआ मांगो, दुआओं में बहुत ताकत है, आयु बढ़ा देती है दुआ, निरोगी बना देती है, सदा सुखी बना देती है। तो हमने देखा कि मम्मा बाबा कैसे सर्व के दुआओं के पात्र बन गए, हमारी दादियां, उन्होंने क्या किया जो सदैव उनके लिए अंदर से दुआएं निकल। ब्रिजेंद्र दादी सुनाती थी, साकार बाबा का पहले से ही दुआओं का खजाना भरपूर था, भगवान ने ऐसे रथ नहीं लिया उसका, उसकी विशेषताएं थी जिसके कारण उस रथ को कबूल किया। तो लौकिक में है, बाबा का एक चाचा था, काका सूरदास था, और उसका चंदन का व्यापार था, बहुत बड़ा व्यापार था चंदन का, लकड़ी का। उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था, अकेला ही था, वो सदा व्रत चलाता था, रोज उसके पास लंगर लगते थे, जो भी आते थे, जिनको जो आवश्यकता होती थी, कपड़े की, अनाज की, वस्तु की, उस सब की पूर्ति करता था, क्योंकि बहुत धन था उसके पास, बहुत दान करता था। बाबा को तो पहले से ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते थे, बाबा काका से कभी कभी मिलने जाता था अपने सारे परिवार को लेके, और जब काका का मत्था टेकता था जाकर के, पैर पकड़ते ना बड़ों, तो जब भी मत्था टेकता था तो काका दोनों हाथों से बाबा की पीठ पर थपता था, देख तो सकता नहीं था, कहता था लकी राज तू हमारे कुल का दीपक, तू हमारे कुल का नाम बाला करने वाला है, तेरे जैसा बच्चा कोई नहीं हो सकता। और बाबा हमेशा काका को बोलता था, काका तू फिक्र मत कर, तेरा ये सदा व्रत मैं हमेशा ही चालू रखूंगा। और अभी हम देखते हैं बाबा ने उसका सदा व्रत किस रीति से चालू रखा। वो तो अल्पकाल की वस्तुएं देता था, स्थूल वस्तुएं देता था, स्थूल पूर्ति करता था, परंतु बाबा ने आकर के ज्ञान धन से, ज्ञान अन्न से सर्व की पूर्ति किया। तो शुरू से लेकर के बाबा के अंदर ये बहुत बड़ी विशेषता थी, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, उनसे दुआएं लेना और श्रेष्ठ कर्म करते जाना। तो दादी कहती थी बाबा तो बहुत शौकीन था, हर एक बात का शौकीन था, पूजा पाठ में भी शौकीन, सब बातों में, घूमने फिरने में भी शौकीन। तो अपने सारे परिवार को कभी हरिद्वार ले जाएगा, कभी ऋषिकेश ले जाएगा, कभी कहाँ ले जाएगा। फिर हरिद्वार वहां हमेशा कहा जाता है, आप लोगों को मालूम है, कहते अगर नदी में खड़ा होके दान करेंगे तो ज्यादा पुण्य मिलता है। तो जाके नदी में नाव में बैठ के जाते थे और वहां जाके ब्राह्मणों को साथ ले जाते थे, उनको दान कर पूजा कराता था। फिर सारी पूजा अर्चा करके दो चार दिन रह करके जब सारा उनका कार्यक्रम पूरा हो जाता था तो बाबा नदी में से पानी की अंचली लेता था ऐसी, और सूर्य की तरफ देख के कहता था, मैंने ये जो कुछ भी किया है दान पुण्य, ये सर्व विश्व की आत्माओं को मिले, इसका पुण्य सब विश्व की आत्माओं को मिले, उनको दान करके जाता। मेरे को नहीं मिले पर विश्व की आत्माओं को मिले। तो देखो पिता का जो संस्कार था उसके अंदर पहले से ही था विश्व पिता का संस्कार, तो हम भी सब उसी बाप के बच्चे हैं। सबकी दुआएं लेना, दुआएं कौन ले सकता है, जो उदार चित है वही दुआएं ले सकता, जो उदाहरण मूर्त है वही दुआएं ले सकता है, जो निष्काम सेवा करता है वही दुआएं ले सकता। सेवाएं तो बहुत करते हैं बाबा, हम बच्चों को भी सिखाते थे हमेशा, बच्चे आप लोग जो सेवा करते हो उसका रिटर्न मिले ये कभी भी सोचना नहीं, क्योंकि सेवा करना और फिर अपेक्षा करना उससे हमारे को कुछ मिले तो वो सेवा सेवा नहीं परंतु वो व्यापार, उसको व्यापार कहा जाता है, देना और लेना। सेवा उसको कहा जाता है जो निस्वार्थ होकर सेवा की जाती है, लेने की अपेक्षा नहीं होती है परंतु सदैव देने की अपेक्षा होती। तो दाता वो ही बन सकते हैं जो औरों को सदैव दुआएं देते रहते हैं, जो देते हैं उसका रिटर्न तो जरूर मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है तो एक्शन का रिएक्शन तो जरूर होता है। जब हम औरों को दुआएं देते हैं, दुआएं देना अर्थात सबके लिए शुभ चिंतक बनना, सदैव शुभ चिंतक रहो, सर्व का भला हो, सर्व का कल्याण हो। कहा जाता है कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। जो औरों का कल्याण करता है उसका सदैव कल्याण होता ही होता है, आप अपने कल्याण की फिक्र मत करो, आप औरों का कल्याण करते चलो। कभी पहले देखते हैं बड़ों की दुआएं कैसी ली जावे, लौकिक चाहे अलौकिक पारलौकिक। हम तो तीन तीन बाप के बच्चे हैं, छोटे नहीं हैं हम, बहुत बड़ी पोस्ट है हमारी, तो हमको तो सबसे दुआएं लेनी है, झोली भरनी है दुआओं से। बड़ों की दुआएं उनके आज्ञाओं पर चलने से मिलती, चाहे लौकिक होवे चाहे अलौकिक होवे चाहे पारलौकिक माता पिता होवे। जो बाबा के आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार बच्चे हैं सदैव बाबा की उनके ऊपर दुआओं की छत्र छाया है और उन दुआओं से पल रहे हैं चल रहे। दुआ देना मना ऐसा नहीं तुम जीते रहो तुम खुश रहो, ये बोलने की बात नहीं होती है, दिल से दुआ निकलती है। ये आत्मा बहुत अच्छी है, सब उसको प्यार करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, यही तो दुआ है और क्या दुआ हो। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखना है, हमारे से जो भी बड़े हैं हमें हमेशा उनकी आज्ञाओं पर चल के उनसे दुआएं लेनी है। हमारे जो साथ वाले हैं साथ वालों से भी हमको दुआएं लेनी है, साथ वालों से कभी दुआएं मिल सकती है जब पहले आपका पाठ पक्का होता है। हर बात में पहले मैं नहीं पहले आप, जब ही पहले आप करेंगे तो सामने वाला आपको दुआ देगा जरूर कि देखो ये कितना फराग दिल है, खुद को आगे नहीं रखता है परंतु हमारे को आगे रख। बाबा को सब इतना क्यों प्यार करते हैं, बाबा को सब इतना क्यों चाहते हैं, क्योंकि बाबा ने कभी भी नहीं कहा पहले मैं, उसने सदैव यही कहा कि पहले मेरे बच्चे, उस दिन भी बाबा की मुरली पढ़ रहे थे तो बाबा क्या कह रहा, सारी दुनिया कहती है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, पर भगवान कहता है ऊंचे ते ऊंचे मेरे बच्चे। तो देखो कितना बाबा ने बच्चों को, छोटों को कितना प्यार दिया, कितना रिस्पेक्ट दिया, अपने से आगे रखा। वो पढ़ने के बाद ऐसा लगा अरे क्या बाबा है, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता। प्यार आता ना उसके लिए, दुआ निकलती अंदर से। तो इसीलिए भगवान को क्या करते, सब याद करते। और उनके संग में आते आते बाबा ने कहा ना, मैं निराकार के संग में आते आते मैं भी निराकार बन गया, संग का रंग लग गया। भेद नहीं मालूम पड़ता था, बाप दादा का भेद मालूम नहीं पड़ता था, इतना उसके रंग में रंग गया था बाबा। तो इसीलिए हमेशा हमारे को जो बड़े हैं उनकी आज्ञाओं पर चलना है, साथ वालों को आगे रख के चलना है और छोटों को प्यार से चलाना। तो जिससे क्या होगा, उनके अंदर से दुआएं निकलेगी हमारे लिए और खुश रहेंगे। दुआ निकलेगी तो खुश रहेंगे ना जरूर। तो अभी हम देखते हैं कि जब भी हमारे को दुआएं मिलती है उसका रिएक्शन हमारे ऊपर क्या होता है। दुआएं मिलती है तो हमारे को खुशी मिलती है। जब हमारे लिए कोई भी शुभ सोचता है, शुभ बोलता है, तो उसकी खुशी हमारे पास उसका प्रभाव पहुंचता है। तो हमारे को हमेशा सभी के लिए शुभ सोचना है, सभी का शुभ चिंतक बन करके चलना है। जितना जितना हम शुभ चिंतक बन के चलते हैं तो हमारे ये वाइब्रेशन सामने वाले के पास जाते हैं और वो भी हमारे लिए शुभ चिंतक बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दुआएं कौन देता है। जिसको जिस चीज की आवश्यकता है, आवश्यकता के समय अगर आप उसके काम में आए, मदद किया, तो आपको दुआ मिले। जैसा देखो एक व्यक्ति है, वो पान पोई लगा के रखता है, पानी बहुत जगह पर लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं पता नहीं आप उसको, पानी पिलाते हैं हाँ, तो वो लगा के रखता है, उसका पुण्य जमा होता है। परंतु कोई एक व्यक्ति प्यास से तड़फ रहा है और उस समय अगर आपने उसको पानी पिलाया, आपका पुण्य तो जमा होगा पर आपको दुआ मिलेगी। उसके अंदर से क्या निकलेगा, इसने मेरे को जीदान दे दी, जिसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, आशीर्वाद। तो उसके अंदर से ये निकलेगा, ये मेरे को देखो समय पर काम में आया। जैसा ये तो पानी का मिसाल है, पर वैसा ही जिस समय जिसको मदद की आवश्यकता है, अगर हम समय के ऊपर उसकी मदद करते हैं तो उसके लिए अंदर से दुआएं निकलती। बोलना नहीं पड़ता है परंतु उसके आगे वो नतमस्तक जरूर हो जाते। बाबा ने हम बच्चों को बताया, दुआ देना अर्थात अपकारियों के ऊपर उपकार करना। उपकारियों के ऊपर तो कोई भी उपकार करता है, जो अच्छा चलता है उसके साथ तो कोई भी अच्छा चलता है, परंतु जो खराब है उसके साथ अच्छा होके चलना। जो अपकार कर रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम उसके ऊपर उपकार करते हो, तो आखिर एक दिन वो आपको दुआ देने के बगैर नहीं रहता। और देखो अगर वो उल्टा चलता है तो भी हमको दुआएं मिलती हैं। कैसे, समझो एक क्रोधी है, वो क्रोध कर रहा है, हम समझते हैं देखो हम इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और ये हमारे से क्रोध कर रहा, ये हमारे से उल्टा चल रहा, परंतु वो हमारे से उल्टा नहीं चल रहा, वो हमको दुआ दे रहा। कैसे, क्योंकि वो हमारे को याद दिला रहा है कि मैं तो कमजोर हूं, मैं तो अधीन आत्मा हूं, परंतु आप तो सर्वशक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैंने क्रोध की अग्नि जलाई है तो आप शीतलता का जल तो डाल दीजिए। तो ये तो दुआ दिया ना उसने, क्यों कहते हैं उसने क्रोध किया? उसने हमको क्रोध करना नहीं सिखाया, उसने हमको शीतलता का जल डालना सिखाया। तो इसीलिए हमें हमेशा ये देखना है कि जो भी अपकारी है उसके ऊपर हमको हमेशा ही उपकार करना है, उसके साथ हमको जैसे का वैसा बन के नहीं चलना। हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो एक दिन धीरे धीरे वो आप ही सुधर जाएगा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दुआ हम कैसे दे सकते हैं? ज्ञान धन दान करने से उनको जीवदान मिलता। जीवदान ये महादान है। हम लोग सभी ने अनुभव किया है कि जिस समय हमारी ज्ञान की ज्योति जगी, जिस समय हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, तो हमारा जीवन ही परिवर्तन में आ गया। हमेशा कहा जाता है कि नेत्र दान ये महादान, तो ज्ञान दान ये महादान है, क्योंकि इससे तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिस तीसरे नेत्र के द्वारा हम खुद को और खुदा को देख सकते हैं, अपने घर को देख सकते हैं, अपनी नई दुनिया को देख सकते हैं। आज यहाँ जो भी बैठे सब त्रिनेत्री है ना, हम लोगों को क्या है, ब्राह्मणों का टाइटल ही त्रिनेत्री। और देखो जिन्होंने उनको रास्ता बताया, जिन्होंने परिचय दिया, उसके लिए हमेशा रहता है अरे इसने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। भले बाबा ने बदला परंतु निमित्त ये बना, हमेशा आता है नहीं आता है, उसके लिए दुआ निकलती है ना, अच्छा हो गया तुम मेरे को मिली, मेरे को रास्ता तो बताया। तो इसीलिए बाबा कहते तुम सभी के गाइड। तो ज्ञान दान करना भी दुआ लेना है, योग दान करना भी दुआ लेना है, क्योंकि जो कमजोर आत्माएं, कमजोर आत्माएं क्या करेगी, अवगुणों के अधीन होती है, वो बीमारी है उनको। जैसा देखो शारीरिक बीमारी होती है, कोई बहुत बीमार है, आपका रिश्तेदार भी नहीं है, कोई पड़ोसी है, पहचान वाला है, नहीं भी पहचान वाला है, कोई बहुत तड़प रहा है बीमारी से, उसको देख के आपको नफरत आती है, तरस पड़ता है। तो जैसा शारीरिक बीमारी को देख के हमको तरस पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा के अंदर जो विकारों की वीकनेस, शारीरिक भी तो विकार होते हैं ना, कहते हैं इसको पेट का विकार है, बोलते हैं ना बीमारी को विकार कहा जाता है, इसको पेट का विकार है, इसको आंख का विकार है, विकार माना क्या बीमारी। तो ये जो विकार है ये भी तो बीमारियां है ना, काम क्रोध लोभ मोह क्या है बीमारियां। तो ये जो बीमारियां हैं, जिसके अंदर वो बीमारियां हैं, उनको देख के हमें क्या पढ़ना चाहिए, तरस पड़ना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेचारे अधीन हैं, कमजोर आत्माएं, वो तड़प रहे हैं उन विकारों के अधीन होने के कारण, उसके जेल में फंसे पड़े। तो जब हम उनके ऊपर तरस खाते हैं, तरस खा के हम उनके ऊपर जब रहम करते हैं और उनको सही रास्ता बताते हैं, तो उनके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलती है कि देखो इन्होंने हमारे को इस जेल से छुड़ा दिया, विकारों से हमको छुड़ा दिया। अगर समझो कोई गलती करता है, अगर कोई भी गलती करता है तो हमको कभी भी उसकी गलती फैलानी नहीं चाहिए। किसी किसी को आदत होती है ना, किसी की कमी देखेंगे ना, चार लोगों को सुनाएंगे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, सामने वाला बोलेगा इसमें ये अच्छा है, वो बोल नहीं नहीं तेरे को नहीं मालूम है ये कैसी है, समझा। तो आप बताओ, जिसके लिए हम खराब वाइब्रेशन फैला रहे हैं जिस व्यक्ति के लिए, क्या वो हमारे को कभी दुआ दे सकता है? हम जिसके लिए खराब वाइब्रेशन फैला रहे उसको वो पहुंचता है नहीं पहुंचता है? आप उसको सामने बोलो नहीं बोलो, आपके वाइब्रेशन उसके पास पहुंच जाते। तो इसीलिए हमें हमेशा ये करना है कि किसी के अंदर भी कोई भी कमी है, कमजोरी है, उस कमी कमजोरी को फैलाना नहीं है, परंतु हमें उसको मदद करके उसकी कमी को निकालना है। तो कोई जब बीमारी से शफा दिलाता है तो जिसको शफा मिलती है उसके अंदर से क्या निकलती है? दुआ निकलती है। अरे हमारी इतनी बड़ी बीमारी थी, देखो इसने मेरे को छुड़ा दिया उसे। तो उसी प्रकार आत्मा के अंदर जो बीमारियां हैं, जो कमियां हैं, वो निकालने के लिए हमें एक दो को क्या करना है? मदद करनी है। तो जितना जितना हम एक दो को अपनी शक्ति लगा करके, अपने गुण लगा करके, जितना जितना उनको उन बीमारियों से छुड़ाएंगे, उतनी हमारी दुआएं जमा होती जाए, वो हमारे को दुआ देंगे। हम तो उनको देंगे परंतु वो हमारे को दुआ देंगे। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमको कभी भी किसी की कमी कमजोरी को फैलाना नहीं है। उनकी कमी नहीं परंतु ये हमारी कमी, क्योंकि हम एक ही परिवार के, सब लौकिक अलौकिक वाले सब एक ही परिवार के हैं। तो हमारे को कभी भी वातावरण को खराब नहीं करना। और सबसे ज्यादा दुआ किसको मिलती है? जो गुणों का दान करते हैं उनको सबसे ज्यादा दुआ मिलती। देखो मनसा के द्वारा हम वाइब्रेशन फैलाते हैं, मनसा के द्वारा हम शुभ चिंतक बन के चलते हैं, ये दुआ देते हैं। वाणी के द्वारा ज्ञान दान करते हैं, इसलिए हमारे को दुआएं मिलती हैं। और कर्मों के द्वारा हम गुणों का दान करते हैं। तो जो गुणों का दान करते हैं उसको सबसे ज्यादा दुआएं मिलती है। गुणों का दान कैसा किया जाता है? गुणों का दान वाणी के द्वारा नहीं कर सकते आप, गुणों का दान मनसा के द्वारा नहीं कर सकते हैं। आपको आज संतुष्टता है, समझो संतुष्टता का दान मैं कैसा करेगी? मेरे को जीवन में धारण करना पड़ेगा। मैं जब उस संतुष्टता को जीवन में धारण कर लेगी तो मेरे को देख करके दूसरे क्या करेंगे? वो भी उसको धारण करना। अरे अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो करेंगे। तो ये क्या किया हमने? उनको गुणों का दान किया। इसीलिए बाबा हमको कहते हैं तुम अपना चार्ट देखो, एक एक विशेषता एक एक गुण अपने अंदर भरते चलो, क्योंकि हम सर्वगुण संपन्न, हमको यहीं भरना बनने का है। तो जितने जितने हमारे में गुण आते जाते हैं वो गुण हमारे को देख के दूसरे सीखते हैं, क्योंकि हम औरों के लिए मार्गदर्शक बन जाते, पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। खुद चलना डिफिकल्ट होता है परंतु अगर कोई गाइड होता है तो चलना उस रास्ते पर सहज होता है। आज मम्मा बाबा या दादियों को सब क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो हमारे आगे उदाहरण हैं। उदाहरण मूर्त बनना माना गुणवान बनना, उदाहरण मूर्त बनना माना कर्मों में परिवर्तन लाना। आप किसी को भी वाणी से नहीं सिखा सकते हैं, वाणी से परिवर्तन नहीं कर सकते, समझ दे सकते हैं, पर वाणी से किसी के अंदर जो कड़ा संस्कार है उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, पर हम अपने गुणों के द्वारा क्या कर सकते हैं? उसको चेंज कर सकते। अगर हमने उस गुण को धारण कर लिया, धीरजता को धारण कर लिया, अभी मैंने धीरजता के ऊपर तो बहुत लेक्चर मारा, और मेरे अंदर अगर धीरजता नहीं होगी, कुछ भी हुआ अगर मैं उतावली हो गई, आप बोलेंगे बहन जी के अंदर धीरजता तो है ही नहीं, तो दान कहाँ हुआ? ज्ञान दान का भी फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे सबसे बड़ा दान गुण दान, गुणदान ही दुआएं दिलाता है। मम्मा बाबा को कितना सब याद कर, और कुछ नहीं, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना, हमको बाप समान बनना है। तो बाबा ने क्या कहा, फॉलो फादर बोला। देखो दूसरे स्कूलों में तो ऐसा होता है, टीचर अगर आप कॉपी करेंगे तो क्या करते हैं, आपको परीक्षा में से उठा देगा, भगा देगा, फेल कर देगा। और हमारा टीचर क्या कहता है, वो कहता है कॉपी करो, कॉपी भी नहीं कार्बन कॉपी करो, बाप की कार्बन कॉपी बन। अरे अभी तो बोलता है कार्बन कॉपी भी नहीं, फोर फुट स्टेप कॉपी करो। अभी तुम्हारे को क्या करने का है, बाबा जैसा बनना है, बाबा जिस रास्ते पर चला है मुझे उसी रास्ते पर चलना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, बाप समान बनना। तो जब ही बाबा ने मुझे रास्ता बताया, श्रीमत दी हुई है, बाबा ने सिर्फ श्रीमत नहीं दिया है परंतु साकार ने हमारे को उस रास्ते पर चल के बताया। तो जब ही उसने चल के बताया है तो मेरा काम क्या है, उस रास्ते पर चलना। हम गलियों में क्यों घुस जाते, कभी मन मत की गली में चले गए, कभी परमत की गली में चले गए, कभी जनमत की गली में चल गए, और फिर चिल्लाना चालू कर देते हैं, अरे तुम रास्ता भूल के चलते हो तो क्या हो। तो बाबा ने हमारे लिए बड़ा सरल हाईवे बना के रखा हुआ है। तुम सदैव अपने सामने किसको रखो, साकार बाबा को रखो, सी फादर फॉलो फादर, क्योंकि ये ह्यूमन रेस चल रही है, ह्यूमन रेस में हम सब दौड़ रहे हैं। दौड़ने के समय सबका कहाँ ध्यान होता है, लक्ष्य तक ध्यान होता है, मुझे वहां पहुंचना है। इधर उधर देखेंगे तो गए कम से। तो हमारे को साइड सीन नहीं देखनी है, परंतु हमारे को क्या करना है। बाबा ने अभी अव्यक्त बाबा की मुरली में था ना, साइड सीन देखते इसीलिए स्पीड कम हो जाती, इसीलिए धुआं लेना भी कम हो जाता है, भागना भी कम हो जाता है, पहुंचना भी दूरी दिखाई पड़ती। तो हमारे को हमेशा कोई भी बात है तो अपने सामने साकार बाबा को लाओ, क्योंकि सबको बाबा की जीवन कहानी मालूम है, सबने पढ़ी है, सुनी है, सबको अनुभव है उसका, कि बाबा अगर हो गए तो बाबा क्या करें। हमको बाबा को फॉलो करना है, क्योंकि हमें बाप समान, हमारा लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो जितना है जितना हम बाबा को फॉलो करते जाते हैं, उतना उतना क्या होता है, हम अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचते जाते। तो हमारे कर्म ऐसे हुए जो हमें देख करके और फॉलो करते, जो उदाहरण मूरत बनेगा वही विश्व का उद्धार कर सके। ज्ञान से सिर्फ उद्धार नहीं होगा, उद्धार उदाहरण मूरत बनने से हो, एग्जाम्पल बनने से हो। उदाहरण मूरत माना एग्जाम्पल, क्योंकि कहां भी जाते हैं देखो, किसी दुकान पर भी जाएंगे सैंपल कितना अच्छा बताते हैं। कपड़े की दुकान पर चले जाओ, वो सेल्समैन अच्छे से अच्छा कपड़ा निकाल के आपको बताएं। सैंपल पर से खरीदी की जाती है ना, तो हम सब बाबा के सैंपल बच्चे हैं, है नहीं? कि ब्रह्मा कुमार और कुमारी माना क्या, दिव्य गुणों की मूर्ति माना ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तो हमें सैंपल बन के बताना है, जब हम सैंपल बनेंगे उदाहरण बनेंगे तभी औरों का भी मन क्या होगा, उनका भी उनको भी ऐसा लगेगा हम भी अपने जीवन को ऐसा बनावे। तो ये प्रेरणा देना माना क्या हुआ, अरे ये इनका नेचर कितनी अच्छी है, इनका बोल कितना अच्छा है, यही दुआ है, यही दुआ और क्या होगी। सरल स्वभाव वाले दुआ ले सकते हैं, सड़े हुए स्वभाव वाले दुआ नहीं ले सकते। दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, एक होता है सरल स्वभाव और एक होता है सड़ा हुआ स्वभाव, मालूम है कैसा। जो सरल स्वभाव वाले होते हैं ना, वो कोई भी बात हो गए तो बड़ी सरलता से ले गए, ठीक है कोई बात नहीं, चलो हो गया ना, जाने ना, फिनिश, आगे बढ़ेंगे। कोई बड़ी बात होगी उसको भी छोटा कर दें, और जो सड़ा हुआ स्वभाव का होगा वो जरा सी बात को खींच खींच के रबड़ के मापक बड़ा करता रहे, जलता रहेगा अंदर ही अंदर, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। वो खुद को नहीं देखता, वो दूसरों को देखता है। किसी किसी को लड़ाई झगड़ा करने की आदत होती है, उसको कोई दुआ देता है जो झगड़ा करता है? बोला एक माई थी बहन, वो जब भी तक झगड़ा नहीं करेगी उसका पेट ही नहीं भरता था, खाना नहीं अच्छा लगता था उसको। तो एक बारी क्या हुआ, सब मोहल्ले वालों ने बोला, अभी माताएं बिचारी तंग आ जाती थी उससे, बोला अभी आज किसी ने भी बाहर निकलने का ही नहीं, दरवाजे बंद करके बैठ जाओ, और जाएगा ही नहीं, क्योंकि उनके वहां कुआ था उसमें से पानी भरते थे वो लोग, तो पानी पर से झगड़ा होता था, भरते थे तो मेरा पहला करते थे। तो इन्होंने क्या किया, उठने के पहले सबने पानी वानी भर लिया, काम वाम कर लिया, सब भाई पुरुष तो चले गए धंधे पर, इन्होंने दरवाजे बंद करके बैठ गए अंदर मजे से। वो बाहर निकली, उसने देखा अरे कोई भी नहीं है, उसने चालू कर दिया, अब झगड़ा किससे करें। अरे बोला सब मर गए क्या, सारे चाली वाले कोई है ही नहीं, दिखते नहीं है कुछ नहीं, उसने चालू कर दिया, समझा? उसके पास था ही है, ये दुआएं हैं, उसकी दुआएं ऐसी होती है। फिर देखा बटबट बटबट करती रही, पर किसी ने कोई जवाब नहीं, अंदर हंस रहे बैठ। फिर उसको इतना गुस्सा लगा, इधर देखा उधर देखा, एक बड़ा पत्थर था, उसको उठा के सीधा उसने कुएं में डाला, कुएं में से आवाज आया डुबुक, बोला डुबुक मैं डुबुक नहीं, तेरा बाप डुबुक, झूठ डुबुक तेरा था। उसने बिचारी ने आखिर कुएं के साथ झगड़ा करके उसको खाना हजम हुआ, नहीं तो हुआ ही नहीं, ये सड़ा हुआ स्वभाव, समझा? तो अगर दुआ लेनी है ऐसा सड़ा हुआ स्वभाव नहीं करना, बनाना कभी, अपनी नेचर को एकदम है इजी बनाओ। इजी नेचर बनाएंगे ना आपकी सब बातें इजी हो जाएगी। अगर इजी नेचर नहीं होगी तो कोई भी बातें इजी नहीं लगेगी आपको, जरा सा बात होगी तो आपका मत्था भारी हो जाएगा, ये अरे ये भी करना है, ये भी करना है, अरे शांति से करो ना, सरलता से करो। जिनका स्वभाव सरल होता है ना उनके लिए सब कुछ सरल है, माया उनके पास नहीं आती है, माया उसके पास आती है जो छोटी बात को बड़ा करने वाला होता है। माया भी देख देख के आई, वो बड़ी चलाक है, उसको मालूम है मेरे को कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, वो देखती रहती है। और उसको ब्राह्मण तो बहुत अच्छे लगते हैं, माया को मजा आता है उसको ब्राह्मणों को तंग करने में, क्योंकि देखो आप थोड़ा सा विचार करो, आधा कल्प हम सब माया के ग्राहक थे, हाँ, कभी काम क्रोध ले, कभी काम ले लिया, कभी क्रोध ले लिया, कभी देखा तो मोह के फांसी में फंस गए। और अभी हमने क्या किया, उसको छुट्टी कर दिया, तू जब अभी हम तेरे से माल खरीदने करेंगे, अभी हम भगवान से लेंगे जो लेना है सुख शांति पवित्रता, उसको कैसा अच्छा लगेगा। एक दुकानदार है, उसके पास बरसों से कोई ग्राहक आता है, वो पुराना ग्राहक एक दुकान छोड़ के दूसरी ग्राहक दुकान पर जाएगा तो उसको सहन होगा? बोले अरे आओ आओ तू मेरा पुराना ग्राहक कहाँ जाता है, मुफ्त में ले जाओ, कोई बात नहीं, बाद में पैसे देना पर मेरे से ले। तो माया भी देखती है कि इन्होंने मेरे से माल खरीद करना छोड़ करके और ईश्वर से माल लेना चालू कर दिया, तो ये बुलाती रहती है। तो इसीलिए क्या है, हमारे को हमेशा ये ध्यान में रखना है, जैसा बाबा को पहचानना आवश्यक है, खुद को जानना आवश्यक है, वैसा ही माया को भी पहचानने की बहुत आवश्यकता। अगर दुश्मन को पहचानेंगे नहीं तो कैसा वार करती है आपको कैसा मालूम पड़ेगा, परंतु उससे कभी भी घबराना नहीं, माया से कभी घबरा। कोई कोई माया को बहुत याद करते हैं, जरा सी अरे माया आ गई, माया माया है क्या, मरा हुआ शेर है, कागज का शेर, तो बाबा से ज्यादा उनको माया याद आती है, तो माया जरूर आएगी ना कि मेरे को इतना याद कर रहे हैं, तो चलो भाई मैं जाती हूँ उनके पास। आप माया को याद ही नहीं करो, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दो, सदैव अपनी बुद्धि को क्या करो, बाबा में बिजी कर डालो। तो जितना जितना हमारी हमारा बुद्धि का योग बाबा के साथ लगता जाता है उतना उतना हमारे जीवन में परिवर्तन आता जाता है। बाबा का वैसा कहा जाता है संग का रंग लगता है, बाबा तो निराकार है तो उसका संग हमको कैसा मिलेगा, इसलिए बाबा कहता है निरंतर मेरे को याद करो। बाबा का संग बुद्धि योग के द्वारा मिलता, हमको अपनी बुद्धि बाबा के साथ लगा के रखनी है जो उसका संग का रंग हमारे ऊपर चढ़ता जाए, और ब्राह्मणों में भी हमको उनका संग करना है जो तीव्र पुरुषार्थी है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना वो फालतू जो बैठ के बातें करते हैं उनका संग नहीं करते हैं, अच्छों का ही संग करते हैं, तभी वो पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो हमारे को भी हमेशा ब्राह्मणों में भी जो फालतू बात करने वाले उनका संग नहीं करना है, जो ज्ञान की बातें करने वाले उनका ही संग करना है जो जीवन में धारण करने, क्योंकि हमें तो आदर्श बनना है ना औरों के आगे, एग्जाम्पल बनना है ना। तो इसीलिए फालतू बातों में अपना समय हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना है। और ये फालतू बातें ऐसी होती है चना चोर गरम होती है, समझा? जैसा देखो चना चोर होता है ना, खाने में बड़ा मस्त होता है, बोलेगे लो भाई चना खाओ, नहीं 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 चाहिए, प्यारे लो ना एक दो, लो एक दो मुंह में, अच्छा और भी दे दो, अच्छा और भी दे दो, ये ऐसा है। तो बाबा कहता है ये परिचिंतन ऐसी चीज है, एक बार ही उसकी लत लग गई ना तुम्हारे को फिर वो आदत ही पड़ जाएगी। इसीलिए तुम्हारे को अपनी शक्ति को अपने समय को उसमें वेस्ट नहीं करना है, परंतु औरों की सेवा करके उनको भी उन बुराइयों से छुड़ाने का काम करना है, ताकि तुम्हारे को उनसे दुआएं मिलती रहे। किसी को भी तुम बुराइयों से छुड़ाएंगे तो वो तुमको जरूर दुआ देंगे, क्योंकि ये वो छूटना चाहते हैं। हरेक पुरुषार्थी अपनी कमियां निकालना चाहता है, परंतु सब में वो ताकत नहीं होती है, इसीलिए उनको जो जिसमें शक्ति है उसका संग करने से धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर से वो बुराई निकल सकती। तो हमारे को अपने पास इतनी पावर जमा करनी पड़ेगी जो हम दूसरों की बुराइयां भी हमारे ऊपर उसका असर नहीं होवे, हमारा असर उसके ऊपर हो। संग का रंग हमारे को नहीं लगे, हमारा रंग उसके ऊपर लगना चाहिए, पक्का रंग के ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। तो बाबा ने जो हमारे ऊपर ये ईश्वरीय रंग लगाया हुआ है, जिस रंग के कारण ही तो रंगीली दुनिया आ जाती है, नई दुनिया आ जाती है। तो हमारे को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे को औरों के ऊपर हमेशा क्या करना है, उपकार करना है, पर उपकारी। पर उपकारी जितना जितना बनते जाएंगे, जो पर उपकार करने वाले हैं उनको भी आप क्या करेंगे, जो हमारे से उल्टा चलने वाले उनके ऊपर भी हमको उपकार करना है, ये बुद्धि में रख। जो उल्टा चलते हमको किसी से उल्टा नहीं चलना है, उनके अंदर से भी ये निकले अरे हमने इनके साथ इतना सब कुछ किया फिर क्या हुआ। आप देखो यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा शुरू शुरू में कराची में कितना अपोजिशन किया सारे समाज ने, परंतु बाबा कभी भी किसके लिए एक शब्द भी नहीं बोल, कभी एक शब्द भी नहीं बोल। उल्टा क्या होता था, ये जो गमसान करते थे ना कराची में इतना एंटी होम मंडली वाले, अभी कर करके थक जाते थे, कभी कभी बंद हो कर देते, करना बंद कर डालते थे। बाबा कहता था ये इनको क्या हुआ है, कुछ करते नहीं है, क्या बात है, समझा? और ये बाबा मनोरंजन करता था इसमें, ये आजकल कुछ करते नहीं है अब क्या बात है, तो उससे तंग नहीं होता था परंतु उससे मनोरंजन करता। हम लोग अगर हमारे लिए कोई कुछ बोले अरे हमारे लिए ऐसा बोल, और बाबा के लिए देखो क्या नहीं बोला लो। पर बाबा ने कभी उनको अपना दुश्मन माना, सदैव मित्र मान के चल। जो एंटी होम मंडली का हेड था ना, वहां तो उसने बहुत कुछ किया कराची में, और बॉम्बे में आने के बाद उसने 1,00,000 रुपए खर्चा करके मेला लगाया अपना, लोगों को समझ देने के लिए। पाप धुलाई किए जाना। तो ये बाबा की कमाल है ना, बाबा सदैव बच्चों को जिसने भी उल्टा बोला उल्टा कर्म किया बाबा ने कभी भी उसका उल्टा रिस्पांस नहीं दिया, परंतु बाबा ने सबको बहुत प्यार दिया। तेरे कांटों से भी प्यार तो तेरे फूलों से भी प्यार, सबसे प्यार दिया। कांटों से प्यार नहीं होता था तो आता क्यों था इस दुनिया में, हम कांटे ही तो थे सब। तो जब ये बाबा कांटों को प्यार करके फूल बना सकता है तो हम फूल फूल नहीं बना सकते, सोचने की बात है ना। हमारा बाबा कांटों को फूल बना सकते, तो हम जब जितने भी फूल बने या कली बने हम आप समान औरों को नहीं बना सकते क्या? तो हम अपने से पूछे ना, हम बनाते या नहीं बनाते? क्योंकि अगर हमारे को विश्व का राज चाहिए तो उसके लिए तो हमारे को अपनी राजा ही तो बनानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी राज करेंगे। जब बोलेंगे नहीं हमारे को तो राजा बनना है, अरे तुम्हारी प्रजा कहाँ है वो तो बताओ, प्रजा तो बनानी पड़ेगी ना। इसीलिए हमारे को औरों को बाबा का संदेश देके, क्योंकि दान ज्ञान दान ये भी बहुत बड़ा परोपकार है, इससे आत्माओं का जीवन परिवर्तन होता है, और जब उनका जीवन परिवर्तन होता है तो उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर आते, और उस आशीर्वाद के कारण उस दुआओं के कारण हम एकदम हल्के हो जाते हैं, उससे फायदा बहुत होता है, तंदुरुस्ती भी ठीक होती है। सेवा ऐसी सब्जेक्ट है, सेवा से दुआ जमा होती है। जितनी जितनी हम सेवा करते हैं, चाहे ज्ञान की सेवा करें, चाहे यज्ञ की सेवा करें, चाहे तन की सेवा करें, चाहे मन की सेवा करें, चाहे धन की सेवा करें, उससे क्या होता है, हमारा पुण्य तो जमा होता ही है, दुआएं भी जमा होती है, और वो दुआएं क्या करती है, हमारी आयु को भी बढ़ाती है, हमारी तंदुरुस्ती भी बढ़ती है। तो स्थूल सेवा जो यज्ञ की है ना, ये सेवा भी दुआएं देने वाली। आप अभी मेरे को बताओ, आप तो पुराने भाई बहन हैं, बाबा के पुराने बच्चे हैं, पर नए भी जो यहाँ पर आते हैं, नए आने के बाद जब ये योग शिविर करके आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, इधर उधर आते हैं, आके वर्णन करेंगे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, आप लोग भी कहते हैं ना बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, ये हुआ वो हुआ, वो वर्णन करेंगे, पर सबसे ज्यादा महिमा किसकी करते हैं, वहाँ इंतजाम बहुत अच्छा था, खाने का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, सब टाइम टू टाइम मिलता था, है या नहीं? ज्ञान किसी को याद नहीं होता है, एक पॉइंट भी रिपीट नहीं करते हैं। दुआ किसको दिया उन्होंने? खाना पकाने वाले को और उनको संभालने वालों को दुआ मिली समझा? उनका ही वर्णन करते, नए भी करते पुराने भी करते हमारे। अरे बहुत अच्छा है बाबा, यहाँ तो देखो ना बाबा के घर में कितना कितना ध्यान रखते हैं सब, यहाँ तो दुआ मिली ना, स्कूल सेवा से भी तो दुआ मिली ना। तो सेवा ये सब्जेक्ट ही दुआओं वाली है, इसीलिए हर प्रकार से तन मन धन जिसकी जो ताकत हो उस अनुसार आप सेवा करते चलो, आपका दुआओं का खाता भरपूर हो जाएगा, और नई दुनिया में है जा करके आप आराम से बैठ जाना, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे दुआएं दो और दुआएं लो, देना सीख जाओ तो लेना भी सीख जाएगी। कोई उल्टा करे तो भी आप सुलटा करेंगे तो दुआएं मिल जाएगी, और क्या हो। ठीक है, ओम चंद। कठिन है क्या दुआएं लेना? कठिन है, इजी है, जो कहते सहज हाथ ऊपर करो। वाह बहुत अच्छा, थैंक यू।
तो अभी सभी क्या करेंगे, अपने स्वभाव को सहज बनाएंगे, है ना? ऐसा स्वभाव नहीं बनाएं जो अब क्या बोले, वो तो बोलना ही नहीं चाहिए, हमें तो दुआ ही लेनी है ना। तो ऐसा स्वभाव बनाएं कि जो सब दुआएं दे। तो थैंक्स दीदी जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें, सेवा करो तो दुआएं मिलेंगी, तन की, मन की, धन की, वाणी की, संकल्प की, हर प्रकार की सेवा दुआ देती है। आपके जीवन में भी यज्ञ के लिए बहुत विशाल बुद्धि है दीदी, तो वो भी सेवा करके दुआएं जमा करते हैं, तो आपको भी सिखा रहे हैं कि सेवा करो तो दुआ मिलेगी। तो दीदी जरूर आपने जो बातें सिखाई हैं हम उन सब का पालन करेंगे, हाथ हिला करके जरूर सभी यस करें, हम हाथ हिला रहे यस कर रहे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, ओम शांति।